आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को किया पूरी तरह नष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट को ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और साहस को सराहा। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों ने प्रधानमंत्री और भारतीय सेना का जताया आभार, कहा यह हमारे लिए गर्व का पल। और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई के बाद प्रदेश में जारी हुआ रेड अलर्ट, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य में सुरक्षा को और मजबूत करने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सशस्त्र बलों ने कल देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑपरेशन सिंदूर संचालित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर इस सैन्य कार्रवाई पर नजर बनाए रखी। ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट का था और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। नई दिल्ली में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेसवार्ता में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों के नाम बताए जहां भारतीय सेना ने कार्रवाई की है।
सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक लश्करे तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था, लश्करे तोयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिम्बर, यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, लश्करे तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी।
कर्नल कुरैशी ने पाकिस्तान के अंदरूनी ठिकानों के नामों का भी जिक्र किया है।
सरजल कैंप सियालकोट, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज तायबा मुरीद के 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है।
पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। इसी बीच उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने वीरता और साहस का परिचय देकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के दौरान सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम किया और योजनाबद्ध रणनीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्य को नष्ट कर दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है।
पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई की भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ विपक्षी दलों ने भी सराहना की है। एक रिपोर्ट।
श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में देश के निर्दोष भाइयों की निर्मम हत्या का भारत का जवाब है। श्री शाह ने कहा कि भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्प है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सशस्त्र सेनाओं की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्व को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बदले की कार्रवाई की सराहना की है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें सशस्त्र सेनाओं पर गर्व है।
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने आज गोंडा में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या करने वालों को सैन्य कार्रवाई के जरिए कड़ा संदेश दिया गया है।
हम लोगों को अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना है, खास करके ऐसे लोग जिन्होंने पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की, पर्यटकों की हत्या की। हमारे दुश्मन देशों को संदेश ले लेना चाहिए कि हम लोगों को उनके चप्पे चप्पे की खबर है, एक एक ठिकाने की खबर है और आगे ऐसे और एक्शन लेना होगा तो हम लोग उतनी ही मजबूती से लेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की सराहना की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई गौरवमय और सराहनीय है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पराक्रमो विजयते लिखकर सेना की सराहना की। लखनऊ स्थित ऐशबाग ईदगाह के इमाम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली ने ऑपरेशन सिंदूर को वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना आज पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मौके पर श्री महाना ने कहा कि हमारी सेना ने जिस पराक्रम के साथ आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया वह हमारे लिए बेहद गर्व का पल है।
सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार देकर जितने भी उनके शौर्य गाथा गए वो कम है। ये उन 26 निर्दोष बच्चों को इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है। उसके साथ साथ 26/11 का भी बदला है, उसके साथ साथ पुलवामा का भी बदला है, क्योंकि सारे आतंकी जहां जहां वो अपने ऑपरेट करते थे सारे के सारे उसको ध्वस्त करने का काम हमारी सेनाओं ने किया है।
शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है यह पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। शुभम की पत्नी ऐशानिया ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री और भारतीय सेना का आभार जताते हुए कहा कि आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा जरूरी है।
हम इस देश की बेटियां हैं, हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे थे और आज मोदी जी ने ये करके हमें दिखा दिया है कि वो भी हमारे साथ उसी लड़ाई में खड़े हैं, वो जाके बदला लेके आएंगे, लिया है और ये सिर्फ शुरुआत है, जितने भी आतंकवादी है सब खत्म हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों ने भाग लिया। भारत की पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई के बाद प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस की सभी फील्ड संरचनाओं को रक्षा इकाइयों के साथ समन्वय करने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने कहा कि यूपी पुलिस हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस और एसएसबी बॉर्डर पर संयुक्त गश्त कर रहे हैं। हर आने जाने वाले की गहनता से तलाशी व जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के लिए राष्ट्रीय योजना को बढ़ावा देने और कौशल विकास के लिए कानपुर समेत देश में 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। पेश है एक रिपोर्ट।
यह योजना 1000 सरकारी आईटीआई को हब में अपग्रेड करने और 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसमें इन संस्थानों में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना भी शामिल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ऐतिहासिक निर्णय युवाओं को कौशल युक्त बनाने के साथ ही उद्योग को सक्षम जनशक्ति और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने बिजली क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए नीति, भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन और आवंटन की योजना, शक्ति में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
गृह मंत्रालय के निर्देश पर देश के 244 वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास और पूर्वाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की विशेष पहल पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह अभ्यास कराया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल का समय वहां के जिला प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हो रही नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल में शामिल हो रहे हैं। कई जिलों में आज शाम अब से थोड़ी देर बाद ब्लैकआउट का भी पूर्वाभ्यास होगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। इससे पहले आज सुबह जालौन और उरई में मॉक ड्रिल हुई। उरई के राजकीय इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल के अभ्यास में आगजनी की घटना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर बिल्डिंग में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालते हुए अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी भी अलर्ट मोड पर रहे। गाजियाबाद में नागरिक सुरक्षा और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से जिले के 11 स्कूलों में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों और नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा और बचाव के प्रभावी तरीकों से अवगत कराया गया। वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को किसी भी आपात स्थिति में बचाव के लिए जागरूक किया गया। वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर आम नागरिक किस प्रकार से अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक CUET UG 13 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल रात यह घोषणा की। पहले यह परीक्षा 8 मई से शुरू होने वाली थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकानों को किया पूरी तरह नष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कैबिनेट को ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और साहस को सराहा। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों ने प्रधानमंत्री और भारतीय सेना का जताया आभार। कहा यह हमारे लिए गर्व का पल। और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई के बाद प्रदेश में जारी हुआ रेड अलर्ट, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्य में सुरक्षा को और मजबूत करने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।